ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है जो न्यू जर्सी अमरीका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 3 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून गैर वाकियत सुनहरी मतन यूहन्ना। जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। जवाबी मुतालिया करंथियों। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को क़ैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आँखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने आप पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे हम भी हैं। दरसीवाज बाइबल में से सैमुएल। खुदावंद इंसान की मानद नज़र नहीं करता इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल को देखता है। यर्मिया। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी पर लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए और जब गर्मी आए तो उसे कुछ ख़तरा ना हो बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुशकसाली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल आने से बाज ना रहे। ऐ खुदावंद इसराइल की उम्मीदगा, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊँगा, तू ही बचाए तो बचूँगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। मत्ती। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने एतकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। यूहन्ना। और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यशाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो फिर ईमान ना लाए। यशाया ने फिर कहा, उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यसाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे कलाम किया। तो भी सरदारों में से भी बथेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार न करते थे, ता ऐसा ना हो कि इबादत खाने से खारिज कर दिए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज़्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। मत्ती। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से ये बातें कहीं। फकीर और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। ऐ रियाकारो, फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं, कि तुम सफ़ेदी फेरी हुई कब्रों की मानद हो जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज़ दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। करंथियों। बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था मगर अब से नहीं जानेंगे, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वह नई हो गईं, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। करंथियों। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता, और खुदा के मुकदस को बुतों से क्या मुनासबत है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को न छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होंगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होगे। ये खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। अब मैं मेरी बिकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हमांग और अवधि है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। क्रिश्चियन साइंस में हम सीखते हैं मादी सोच या जिस्म की तमाम खारजज आंगी फरेब नजरी है, जो अगरचे हकीकी और यकसान दिखाई देती है लेकिन वो ना हकीकत की ना ही यकसानियत की मलकियत रखती है। चूंकि खुदा नेक और सब जानदारों का सरचश्मा है, वो इखलाकी या जिस्मानी बदसूरती पैदा नहीं करता, इसलिए ऐसा बिगाड़ हकीकी नहीं बल्कि फरेब नजरी गलती का सैराब है। لہٰذا سائنس ان بڑے حقائق کو ظاہر کرتی ہے، انہی کی بنیاد پر کسی بھی شکل میں نہ غلطی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے نہ ہی اس کی تابعہ داری کرتے ہوئے یسوع نے زندگی کا اظہار کیا۔ فانی وجودیت ایک خواب ہے، فانی وجودیت کی کوئی حقیقی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ انا ہے۔ روح ایک خودی ہے جو خواب کبھی نہیں دیکھتی بلکہ سب باتوں کو سمجھتی ہے، جو کبھی غلطی نہیں کرتی اور ہمیشہ بیدار رہتی ہے، جو کبھی ایمان نہیں رکھتی بلکہ جانتی ہے، جو کبھی پیدا نہیں ہوتی اور نہ مرتی ہے۔ روحانی انسان اس خودی کی شبیہ ہے۔ انسان خدا نہیں ہے بلکہ روشنی کی وہ کرن ہے جو سورج سے نکلتی ہے۔ انسان یعنی خدا سے نکلا ہوا خدا کو منعکس کرتا ہے۔ ایک عقل کے لامحدود عناصر سے رنگ، معیار اور تعداد کی تمام تر اشکال ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ بنیادی اور ثانوی دونوں لحاظ سے ذہنی ہیں۔ ان کی روحانی فطرت محض روحانی حواس سے ہی سمجھی جاتی ہے۔ مادی کے ساتھ ہمدرد ہوتے ہوئے دنیاوی انسان غلطی کے آگے پیچھے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے، اور وہ اس طرف رجحان رکھے گا۔ وہ کسی مسافر کی طرح مغرب میں ایک تفریحی سفر پر جانے والے کی مانند ہوگا۔ یہاں اس کی صحبت دلکش اور خواہشیں دلچسپ ہوتی ہیں۔ 6 دن تک سورج کا پیچھا کرنے کے بعد وہ 7ویں دن مشرق میں واپس آتا ہے۔ اگر وہ خود کو درست سمت میں جاتا ہوا تصور کرے گا تو وہ بہت مطمئن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے الٹے پلٹے راستوں سے شرمندہ ہو کر وہ کسی دانش مندانہ زیارت کے لیے اپنا پاسپورٹ وصول کرے گا، اور اس کی مدد سے درست راہ کو پانے اور اس پر چلنے کا سوچے گا۔ پینڈولم کی طرح گناہ اور معافی کی امید میں جھولتے ہوئے، خود غرضی اور نفس پرستی کو متواتر تنزلی کا موجب بنتے ہوئے، ہماری اخلاقی ترقی دھیمی ہو جائے گی۔ مسیح کے مطالبے پر بیدار ہونے سے بشر مصائب کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند خدا کو بچانے کی بھرپور کوششیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ یہ کوششیں کامیابی کا سہرا پاتی ہیں۔ جس کی اصطلاح مادی فہم ہے وہ چیزوں کے صرف فانی عارضی فہم کی رپورٹ کر سکتا ہے، جبکہ روحانی فہم صرف سچائی کی گواہی دے سکتا ہے۔ مادی فہم کے لیے غیر حقیقی تب تک حقیقی رہتا ہے جب تک کہ کرسچن سائنس کی بدولت اس فہم کی تصحیح نہیں ہو جاتی۔ مادی فہم کی مخالفت کرتے ہوئے روحانی فہم میں الہام، امید، ایمان، سمجھ، سود مندی، حقیقت شامل ہوتے ہیں۔ مادی فہم یہ ایمان ظاہر کرتا ہے کہ عقل مادے میں ہے۔ یہ انسانی عقیدہ خوشی اور درد، امید اور خوف، زندگی اور موت کے فہم کے مابین تبدیلی لاتے ہوئے فانیت یا غیر واقعیت کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتا۔ جب حقیقی کو حاصل کر لیا جاتا ہے جس کا اعلان سائنس کی بدولت ہوتا ہے، خوشی مزید ٹھوکر دلانے والی اور نہ ہی امید دھوکہ دینے والی ہوتی ہے۔ روحانی خیالات جیسے کہ اعداد اور خطوط اصول سے شروع ہوتے ہیں اور یہ کسی مادی عقیدے کو قبول نہیں کرتے۔ روحانی خیالات ان کی الہی ابتدا اور ہستی کے روحانی فہم کی جانب رہنمائی دیتے ہیں۔ ایک مسیحی سائنسدان اور ایک مخالف دونوں فنکاروں کی مانند ہیں۔ ایک کہتا ہے میرے پاس نہ قابل تقسیم اور جلالی روحانی خیالات ہیں، جب دوسرے میری مانند انہیں ان کی روشنی اور محبت میں دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ خیالات حقیقی اور ابدی اس لیے ہیں کیونکہ یہ سچائی سے لیے گئے ہیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور سب جیتا گیا ہے اس کے درست اندازے کے مطابق جو حقیقی ہے۔ دوسرا فنکار جواب دیتا ہے تم نے میرا تجربہ غلط کر دیا، میرے ذہنی نظریات نہیں ہیں سوائے ان کے جو ذہنی اور مادی دونوں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مادیت ان نظریات کو نامکمل اور تباہ کن بناتی ہے، پھر بھی میں آپ کے ساتھ اپنے تبدیل نہیں کروں گا کیونکہ میرے مجھے ایسی ذاتی خوشی دیتے ہیں اور حیران کن حد تک وہ محاورہ نہیں ہے۔ یہ کم خود ساختگی کا مطالبہ رکھتے ہیں اور نظروں سے دور روح کو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے پرانے عقائد یا انسانی آرا کھونے کا کوئی نشان نہیں ہے۔ عزیز قارئین، کون سا عقلی تصور یا خارجی خیال آپ کے لیے حقیقی ہوگا، مادی یا روحانی؟ आप दोनों नहीं रख सकते, आप अपना खुद का नमूना ला रहे हैं। ये नमूना या आर्जी है या अवधि, या रूह या फिर मादा आपका नमूना है। अगर आप दो नमूने रखने की कोशिश करते हैं तो अमली तौर पर आपके पास कोई भी नहीं होगा। घड़ी में पेंडुलम की मानद आपको आगे पीछे धकेला जाएगा ताकि मादे की पसलियों से टकराएं और हकीकी और गैर हकीकी के मबैन झूलें। क्रिश्चियन साइंस आज़ादी को ऊंचा करती और चिल्लाती है कि मेरी पैरवी करें, बीमारी, गुनाह और मौत के बंधनों से बचें। यीशु ने रास्ता मुतय्यन किया है। दुनिया के बासियों, खुदा के फर्जंदों की जलाली आज़ादी को कबूल करें और आज़ाद हों। ये आपका इलाही हक है। मादी हिस्से भरम ने, ना के इलाही कानून ने आपको बांधा हुआ है, आपके आज़ाद अज़ा को जकड़ा हुआ है, आपकी सलाहियतों को मज़ूल कर रखा है, आपके बदन को लागर किया हुआ है और आपकी हस्ती की तख्ती को ख़राब कर रखा है। अगर खुदा ने इंसान पर हुक्मरानी के लिए मादी कवानीन कायम किए होते जिनकी नाफरमानी इंसान को बीमार बना देती, तो यीशु ने बराह रास्त मुखालफत में और तमाम मादी हालतों की खिलाफ वर्जी में शिफा देते हुए इन कवानीन को रद्द न किया होता। बीमारी का या मादी अकल के चंद मखसूस अंदाज का तबादला नामुमकिन होता अगर हस्ती की इस बड़ी हकीकत से आगाही न पाई होती, यानी कि कुछ भी गैर हम आहंग हस्ती में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि ज़िंदगी खुदा है। नज़रियात पर इल्ज़ामात लगाने के लिए मादी अकीदे के लिए विरासत एक समर आवर मौजू है, लेकिन अगर हम सीखते हैं कि कुछ भी हकीकी नहीं बल्कि दुरुस्त है तो हमें कोई ख़तरनाक विरासत नहीं मिलेगी और जिस्मानी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आप ये समझ जाएं कि ये फ़ानी वजूद खुदकार फरेब है और हकीकी नहीं है तो आप सूरत हाल पर काबू पा लेते हैं। फ़ानी फहम मतवातर तौर पर फ़ानी जिस्म के लिए गलत आरा के नतायज को जन्म देता है और ये तब तक जारी रहता है जब तक हक फ़ानी गलती को इसकी फ़र्जी तवानाइयों से बरतरफ नहीं करता, जो फ़ानी फरेब के हल्के से जाले को साफ कर देता है। आइए हकीकी और अब्दी से मुतल्लिक सीखें और रूह की सल्तनत, आसमान की बादशाही, आलमगीर हम आहंगी की बादशाही और हुक्मरानी के लिए तैयारी करें जो कभी खो नहीं सकती और ना हमेशा के लिए अनदेखी रह सकती है। अब मैं मिरवे के रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ्राइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, असलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वह हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।